नमस्कार आदाब दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की पाठशाला में आने वाले सभी छात्रों और उनके परिजनों का स्वागत है। आज दिन है अर्थ के नाम यानी अर्थशास्त्र के नाम। तो जो छात्र अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारे काम छोड़कर अपने फेवरेट शिक्षक को सुने और मन में जो भी सवाल आए वो रिकॉर्ड भी करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क एजुकेशन प्रोग्राम में मैं विजय कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के किन किन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएँ हैं। तो आइए समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांत को अध्ययन करने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो ये बता दें कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने किया था। समष्टि अर्थशास्त्र को विस्तार से अध्ययन करें उससे पहले यह जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, लार्ज, और समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का भी संबंध इसी से है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का हम सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने शरीर को संपूर्ण अर्थव्यवस्था समझ लें और इसका एक साथ अध्ययन करें तो यह मैक्रो का विषय हो जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है, और यदि हम इसके प्रत्येक अंग का अलग अलग अध्ययन करें तो यह माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय बन जाता है। यदि इसे परिभाषित करना हो तो प्रोफेसर बोल्डिंग को उद्धृत कर सकते हैं, जिसके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन इकाइयों के समूह का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत आयों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करता है। आइए अब समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आय एवं रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं जैसे GDP, NDP, GNP, NNP ये क्या है और इसकी माप कैसे की जाती है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत रोजगार का निर्धारण, प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे संक्षेप में इसके अंतर्गत रोजगार और बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा स्फीति का अध्ययन किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन अर्थात मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन और अवस्फीति डिफ्लेशन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार चक्रों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तेजी मंदी जो अर्थव्यवस्था में आती रहती है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत से यह जानने में हमें सहायता मिलती है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार और कितना निर्धारित होता है, अर्थात उसमें मजदूरों को कितना भाग प्राप्त होता है, उद्यमियों और भूमिपतियों को कितना भाग प्राप्त होता है। आइए अब समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण में बहुत ज्यादा है। आजकल सभी देशों का उद्देश्य पूरे समाज के लिए अधिकतम कल्याण प्राप्त करना हो गया है, अतः इसको आर्थिक समूह जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल व्यापार मात्रा इत्यादि से व्यवहार करना होता है, जिसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र के घटकों का प्रयोग जरूरी है। आर्थिक विकास में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। आधुनिक सरकार आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रमुख भूमिका अदा करती है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा योगदान देती है। इस दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। जब हमें अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करना हो तो समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, उस देश की जनसंख्या क्या है, कुल रोजगार का स्तर क्या है, देश की राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन की मात्रा और इसके विभिन्न स्रोत क्या है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। जब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य उनकी आर्थिक प्रगति की तुलना करने की आवश्यकता होती है, तब हम समष्टि अर्थशास्त्र के ही घटकों का प्रयोग करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यापक महत्व होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ दोष हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत इकाइयों या छोटे छोटे समूह जिनसे समाज या अर्थव्यवस्था की रचना होती है उसकी अवहेलना की जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोर को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेने से भ्रांतिपूर्ण अवस्था उत्पन्न हो जाती। यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति के विषय में जो बातें सत्य हो वह सारी आर्थिक प्रणाली पर भी लागू होती। जैसे व्यक्ति और समाज की बचतें, एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है, लेकिन यदि सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो यह अभिशाप सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसी बचत से उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी आएगी और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन, रोजगार एवं आय में निरंतर कमी आएगी। इन स्थितियों को हम सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कुछ व्यक्तिगत इकाई के लिए सही है उसका समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर सही होना आवश्यक नहीं है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानें कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के किन किन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और इसकी क्या सीमाएँ हैं। हम अगले क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं के बारे में बात करेंगे। आज के क्लास से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।